ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारी प्रेम बहन जी, आप पंजाब जोन से करनाल सेवा केंद्र से हैं। 8 सेवा केंद्र और 150 गीता पाठशालाएं, आप बहुत अच्छी तरह से सभी को प्रेम से पालना देते हैं और नाम ही है प्रेम बहन, प्रेम की मूर्त हैं। और आज सभी को बाबा के अच्छे अच्छे अनुभवों से लाभ पहुंचाएंगे। आप अच्छी तरह से वरदानी बोलों को प्रेम से सुनना और अपने अंदर समाते रहना। आप सभी भाई बहने बहुत दूर दूर से लंबा सफर करके अपने घर में, बाबा के घर में, बाबा के स्मृति दिवस पर आप पधारे हैं, तो आप सभी का भी मधुबन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अभी प्रेम बहन जी से हम बाबा के बारे में अच्छे अच्छे अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बहुत ही लक्की बच्चे हैं। हम सभी अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस पर खास प्यारे बाबा के घर में पहुंचे हैं। ये अव्यक्त मास चल रहा है और हम सभी अव्यक्त दिवस मनाने के लिए यहाँ शांतिवन में आए हैं। 2 दिन से हमारे साकार बाप दादा की पालना लिए हुए भाई और बहने अपने बहुत अच्छे अच्छे बाप दादा के अंग संग के अनुभवों से यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज आदरणीय दादी जानकी जी भी कह रहे थे कि आज पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई, सारी रात बाबा के चरित्र मन में घूमते रहे, चरित्रों का वो पिक्चर सामने आता रहा और उसी याद में कहा कि मैं सारी रात खोई रही। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी सुन रहे हैं, वातावरण भी बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि सभी भाई और बहनें अधिकतर मौन में रहने का, शांति में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 4:45 बजे तक योग भट्टी का भी आयोजन किया गया। बहुत से भाई बहनों ने, मैक्सिमम भाई बहनों ने भट्टी का भी लाभ प्राप्त किया। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रात्रि को सभी को हुए। स्मृति दिवस का माना ही है स्मृति दिवस, क्योंकि स्मृति से ही हम बच्चों में स्मृति आती है। जब हम बाबा के चरित्रों की, बाबा के गुणों की स्मृति लाते हैं, अर्थात उस स्मृति में आते हैं कि प्यारे बाबा में, ब्रह्मा बाबा में क्या क्या गुण थे, क्या क्या विशेषताएं शिव बाबा ने उनके अंदर भरी थी, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी सेवा उन्होंने की, जिसके फलस्वरूप कितना ऊंच अपना भाग्य बनाया। तो जब हम इन बातों की स्मृति मन में पुनः पुनः लाते हैं तो हम बच्चों को भी ये स्मृति समर्थि दिलाती है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के श्री मत के अनुसार इतना ऊंच पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो आखिर हम भी किसके बच्चे हैं? हम भी ब्रह्मा वत्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारे साकार बाबा की पालना लिए हुए भाई बहने ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम बाबा के संकल्प की रचना हैं, जो साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं। हम सभी उनकी अव्यक्त रचना हैं। तो साकार भाई बहनों को भी और अपनी वरिष्ठ दादियों को भी, बाबा के अंग संग रहे हुए भाई बहन भी हमारे सामने सैंपल हैं, एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कितना ऊंच बनाया है, कितना महान बनाया है, कितना त्यागमय बनाया है, कितना तपस्या में रत किया है। तो हम सभी बाबा के बाद में आने वाले बच्चे भी उनसे ये सब सीख रहे हैं। और प्यारे शिव बाबा ने भी कहा है कि फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, उनके कदम पर कदम रखो, उनके नक्शे कदम पर चलते रहो, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी बाप समान बन ही जाएंगे। एडवांस पार्टी भी हम सभी बच्चों का वतन में इंतजार कर रही है कि जो जिन भाई बहनों को हम छोड़कर आए हैं, जो बाबा के संकल्प की रचना है, वो भी शीघ्र तैयार हो जाएं, सुंदर स्वर्णिम राजधानी स्थापन हो जाए और सभी बाबा के बच्चे उस सतयुगी दुनिया का, उस स्वर्णिम दुनिया का सुखद आनंद लें। परंतु उससे पूर्व प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को जिम्मेवारी दी है, इस विश्व परिवर्तन की, विश्व कल्याण की, अथवा जन जन तक धरती पर आए हुए भगवान का मैसेज सबको मिल जाए, शिव बाबा का पैगाम सभी आत्माओं तक पहुंच जाए, इस प्रकार की सेवा की भी जो जिम्मेवारी दी है, वो भी प्यारे बाबा की स्मृति में रहते हुए वो सेवा भी हम बच्चे सहज रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जितना जितना बाबा के दिए हुए वरदानों को भी हम स्मृति में लाते, शक्तियों को स्मृति में लाते, उतनी ही समृद्धि हमारे अंदर आती जाती। प्यारे बाबा ने कितने वरदानों से हम बच्चों को सजाया है, हम बच्चों का श्रृंगार किया है कि बच्चे आप इस विश्व की आधार मूर्त आत्मा हैं, इस विश्व की आप उद्धार मूर्त आत्मा हैं, आप भगवान के राइट हैंड हैं, आप खुदाई खिदमतगार हैं, विश्व परिवर्तन करने वाले आप विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर सुंदर टाइटल, वरदान और गुणों से प्रतिदिन बाबा हम बच्चों को सजाते हैं। लेकिन जितना हम उन वरदानों को स्मृति में रखते हैं, अर्थात उस स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, तो उतना ही वो प्रैक्टिकल रूप में हमारे द्वारा क्रियान्वित भी होते हैं और दूसरी आत्माओं को भी सहज अनुभव होते हैं और सेवा भी इस आधार से अति सहज हो जाती है। एक ही हम टाइटल ले लेवें तो मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, तो हम समझते हैं कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो इतना कार्य नहीं कर पाता जितना राइट हैंड में शक्ति होती है किस भी कार्य को करने की। तो मैं कौन सा हैंड हूँ भगवान का? मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। पूर्ण रूप से, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प से, मन और वचन, कर्म से शिव बाबा पर कुर्बान जाने वाली मैं आत्मा हूँ। उनके रचे हुए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर संपूर्ण समर्पण अथवा संपूर्ण स्वाहा होने वाली मैं वो खुदाई खिदमतकार और मददगार आत्मा हूँ, तो मैं भगवान का राइट हैंड सिद्ध हुआ। अगर थोड़ा बहुत करके ही हम खुश हो गए तो उसको राइट हैंड नहीं कहा जाएगा। तो एक एक टाइटल बाबा का लेते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उस स्वमान की सीट पर हम सेट होते हैं, उस स्थिति में स्थित होते हैं, तो कितना अनोखा, कितना निराला, कितना सुंदर अनुभव हमको खुद भी अपने जीवन में प्रतीत होता है। खुद भी अपने आप को हम कितना पावरफुल, कितना सशक्त महसूस करते हैं। तो स्मृति में लाते रहें और स्मृति स्वयं में पाते रहें। जैसे हम सब ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना है कि जब एक बार कहीं पत्थर तोड़ने की बात आई तो सभी ने अपने अपने जोर की आजमाइश की उस पत्थर को तोड़ने के लिए। बड़े बड़े बलशाली भी आए परंतु उस पत्थर को नहीं तोड़ पाए। परंतु एक पतला सा भाई राजपूत, उसने कहा कि मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मेरे साथ एक व्यक्ति रहेगा, वो मेरे कान में कुछ बोलेगा, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो कहा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। तब उस राजपूत व्यक्ति ने क्या किया, जब वो व्यक्ति उसके कान में कुछ बोलता था तो उसके अंदर जोश भरता था, फिर जब कुछ और बोलता था और जोश भरता था। कुछ तो पहले ही वो पत्थर अनेकों के हथौड़े सहन कर करके नर्म हो ही चुका था, परंतु जब पावरफुल स्मृति उसके मन में आई, इमर्ज हुई, उसको स्मृति दिलाई गई कि आप कौन हो, कौन से कुल के हो, राजपूत कितने शक्तिशाली होते हैं, वो जिस बात को ठान लेते हैं उसको कर गुजरते हैं, आप उन्हीं के वंशज हो, उन्हीं की संतान हो, आप ये कर सकते हो। बस ऐसा उसको स्मृति दिलाने पर एकदम जोर से हथौड़ा पत्थर पर मारा और वो पत्थर दो टुकड़े हो गया, टूट गया, और उस राजपूत व्यक्ति ने इनाम प्राप्त किया। इस स्मृति से समर्थि आई उसके अंदर कि मैं कौन से कुल का हूँ। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी किस कुल के हैं, किसकी हम संतान हैं, किसने हमको इतने बड़े बड़े वरदान दिए हैं, किसने हमारे अंदर इतने गुणों को संजोने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब लगातार ये स्मृति हम अपने मन में इमर्ज रूप में रखेंगे तो हम ही वो राजपूत अर्थात राजा बेटा, राज अर्थात राजा और पूत अर्थात पुत्र बेटा, तो वही हम राजा बेटा हैं भगवान के, जो भगवान की दिए हुए वरदानों को सदा स्मृति में रखकर, सदा उनसे स्मृति प्राप्त कर अपने अंदर जो भी संकल्प धारण करेंगे उसको हम करके ही छोड़ेंगे, उसको कर गुजरेंगे, ऐसा स्मृति से स्मृति हमारे अंदर आती चली जाएगी। तो हम सभी जो भी भाई बहने बैठे हैं, हम सब समझते हैं ना कि हम वही राजा बेटा हैं, शिव बाबा के वही राजा बेटा हैं, ब्रह्मा बाबा के, जो उनके दिए वरदानों और शक्तियों को सदा स्मृति में रख करके, इमर्ज रख करके हम विश्व परिवर्तन के कार्य को अति शीघ्र समीप लाने वाले हैं, नजदीक लाने वाले हैं। हम स्मृति में लाएं कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। हम ही थे, बोलो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। इस स्मृति से कितना सहज, अति सरल पुरुषार्थ हमारा हो जाएगा। पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं लगेगी, पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। बहुत सहज भाव से, अति सरल ढंग से हम पुरुषार्थ के मार्ग पर, अपनी इस रूहानी यात्रा पर शीघ्र अति शीघ्र अग्रसर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और जल्दी ही अपनी संपूर्णता की मंजिल को ब्रह्मा बाप समान प्राप्त कर सकेंगे, ब्रह्मा बाप समान उस संपूर्णता की मंजिल को वर सकेंगे। तो इस स्मृति पर एक बात याद आती है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री को कहता है कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो आपको बहुत बड़ा पुनिशमेंट मिलने वाला है। वो मंत्री बेचारा घर गया राजा के प्रश्नों को सुनने के बाद, तो बड़ा विचलित, बड़ा परेशान, घर में इधर से इधर चक्र काट रहा है। उसकी बेटी ने देखा कि पिताजी बहुत परेशान हैं, उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं हैं, तो कहा, पिताजी मैं देख रही हूं कि आप बहुत चिंतित हैं, आप अपनी समस्या बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आपके वश की कुछ बात नहीं है, आप भी परेशान हो जाएंगी बात को सुनकर, ऐसा कुछ नहीं। तो बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, हो सकता है कि इस समस्या का कुछ समाधान निकल आए, आप छोटी ना समझें, कोई पता नहीं चलता कि कब किस बात का हल भी निकल सकता है। तो उनके पिता ने बताया कि राजा ने 4 प्रश्न बड़े अटपटे किए हैं और उनका उत्तर मांगा है, परंतु मेरी समझ में कुछ उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो बेटी ने कहा, आप प्रश्न बताइए तो सही पिताजी, प्रश्न हैं क्या? तो वाकई प्रश्न अटपटे थे। तो पहला प्रश्न क्या था? हां हां नहीं। दूसरा, नहीं नहीं हां। तीसरा, नहीं नहीं नहीं। और चौथा, हां हां हां। इसका अर्थ बताइए कि ये क्या चीज है? ऐसा करने को कहा। तो बेटी ने वो उत्तर सुना, प्रश्न सुना, तो कहा, पिताजी बस इतनी सी बात थी और आप इतने चिंतित, पहले से ही मुझे बता दिया होता तो इन प्रश्नों का तो उत्तर कोई कठिन था ही नहीं। आप जाइए और राजा को कह दीजिए निश्चिंत होकर के कि ये भी कोई प्रश्न है, इनका उत्तर तो मेरी बेटी भी दे सकती है। इंटेलिजेंट तो थी उनकी बेटी। तो पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ बात बनी। लेकिन लड़की ने एक कंडीशन साथ में बता दी कि पिताजी आप राजा को कहना कि एक सुंदर सी पालकी बना करके हमारे घर तक पहुंचाए, उस पालकी में बैठ करके मैं जाऊंगी राजा के दरबार में और वहां वो बहुत सारे लोगों को एकत्रित करे, उन सब के बीच में मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ। तो मंत्री ने जाकर के राजा को कहा कि इस प्रश्नों का उत्तर तो मेरी बेटी दे सकती है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको वही बता दिया कि पालकी लाने वाली बात। तो राजा ने कहा, ये क्या कठिन बात है, पालकी आपके घर फलां दिन पहुंच जाएगी और आप इस तरह इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पालकी सजकर पहुंच गई उनके घर पर मंत्री के। वो कन्या उस पालकी में बैठ गई और कहा कि पिताजी आप भी पालकी के साथ साथ चलेंगे। तथास्तु, पिताजी साथ साथ चल दिए। जैसे ही थोड़ा रास्ते में आगे पहुंचे तो क्या देखा, एक बेगर भीख मांग रहा था। तो कहा, पिताजी इसको भी पालकी में बिठा लीजिए, अब प्रश्नों के उत्तर दिलाने थे, जो कहेगी सो करना पड़ेगा। तो उस बेगर को भी पालकी में बिठा लिया गया। पालकी चल दी कुछ और आगे बढ़ी तो देखा कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, सड़क के किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। तो कहा कि पिताजी इस तपस्वी को भी पालकी में बिठाइए, उसको भी बिठा लिया गया। फिर और आगे बढ़े तो आगे क्या देखा कि एक सेठ था उस नगर का, जो बहुत धनवान था परंतु बड़ा कंजूस था, थोड़ा सा भी कभी दान पुण्य का कार्य नहीं किया करता था। तो कहा, पिताजी इसको भी आप पालकी में साथ ले लीजिए, उसको भी बिठा लिया गया। बिल्कुल राजा के दरबार के महल के करीब पहुंचने वाली थी पालकी, तो एक सेठ जो कि उस नगर का बहुत दानी सेठ था, तो उसको उस कन्या ने देखा तो कहा, पिताजी इन सेठ जी को भी इस पालकी में बिठाकर साथ ले चलना होगा। तो उनको भी साथ ले लिया गया। जब दरबार के अंदर पहुंचे, जहां पर बहुत पब्लिक को राजा ने आमंत्रित किया हुआ था, तो वहां पर बहुत ऊंची स्टेज पर उस कन्या को बुलाया गया और राजा ने उसको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। तो पहला प्रश्न कहा कि हां हां नहीं, इसका उत्तर दीजिए। तो उन चार लोगों को जिनको पालकी में बिठाकर ले गई थी साथ में, तो जब ये उत्तर मांगा कि हां हां नहीं, तो उन्होंने उस कन्या ने कंजूस सेठ को आगे खड़ा कर दिया, कुछ कहने की बजाय, शब्द की बजाय, कि ये है आपके प्रश्न का उत्तर। राजा कहे, मैं समझा नहीं, ये आप क्या कर रही हो? तो बोला कि इसके पास था भी, इसके पास अभी है भी, परंतु ये अभी कुछ भी दान पुण्य नहीं करता, तो अगले जन्म में इसके पास कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ था भी, हाँ है भी, और नहीं मतलब होगा नहीं आगे। तो हाँ हाँ नहीं। दूसरा प्रश्न का उत्तर कहा कि नहीं नहीं हाँ, इसका बताइए। तो उसने तपस्वी को आगे खड़ा कर दिया, बोला ये है आपके प्रश्न का उत्तर, अर्थात इसके पास था भी नहीं, इसके पास अभी कुछ है भी नहीं, लेकिन तप से राज गाया गया है ना, तो आगे होने वाला है। नहीं नहीं बट आगे हाँ, ये है आपके प्रश्न का उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका उत्तर दीजिए। तब कन्या ने किसको खड़ा किया होगा? उस भिखारी को, कि इसके पास था भी कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं, और आगे होगा भी कुछ नहीं। कुछ कर नहीं पाता क्योंकि है ही कुछ नहीं, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर, नहीं नहीं और नहीं। चौथा प्रश्न पूछा कि हाँ हाँ हाँ, इसका उत्तर दीजिए। तो उसने उस दानी सेठ को सामने खड़ा कर दिया, ये है आपके प्रश्न का उत्तर, कि इनके पास था भी, इनके पास है भी, और आगे भी दान पुण्य कर रहा है, इट मीन्स आगे होगा भी। तो ये है हाँ हाँ और हाँ। तो चारों ही बातों के, प्रश्नों के प्रैक्टिकल उत्तर उस छोटी सी कन्या ने दे दिए। राजा बहुत खुश हुआ और उसके पिता जो है वो पुनिशमेंट से छूट गया, उसके बजाय बहुत बड़ा प्राइज उस कन्या को मिला। सो हम सभी बाबा के बच्चे थे भी, क्या थे? देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सब गुणों और शक्तियों से चार्ज थे, फुल थे, और अभी फिर से हो रहे हैं, उन सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो हम थे भी, हैं भी और होंगे भी। तो ये चौथा वाला उत्तर हाँ हाँ हाँ, ये हम सभी पर फिट बैठता है ना, तो ताली बजा दीजिए अपने लिए। तो इसलिए कहा कि जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो स्मृति अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगी। जो भी इविल्स को निकालने की और वैल्यूज को जीवन में धारण करते रहने की ऑटोमेटिकली शक्ति हमारे अंदर आएगी। लेकिन अगर हम बाबा के वरदानों को, बाबा की दी हुई शक्तियों को, बाबा की दी हुई डिवाइन वैल्यूज को अगर हम स्मृति में नहीं लाते निरंतर, उनको भूले हुए रहते हैं तो विस्मृति से क्या होता है? जहां विस्मृति होती है तो सारी शक्ति लीक हो जाती है। जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, वैल्यूज को धारण करना चाहते कर नहीं पाते, इविल्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि स्मृति नहीं तो समर्थी नहीं। कहा भी जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्थिति माना वैसी ही शक्ति। जिस परसेंटेज में स्मृति हमारी रहेगी उसी परसेंटेज में हमारे अंदर शक्ति आएगी अथवा हमारे अंदर वो वैल्यूज आएंगी। अगर हम विस्मृति में हैं तो माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है, किसी न किसी कोने से किसी न किसी रूप से हमारे अंदर एंटर होने का प्रयास करती है। कभी आंखों के द्वारा कुछ देखा तो चली गई अंदर, कभी कानों के द्वारा कुछ ऐसी बात सुन ली तो, और अगर मुख के द्वारा कुछ ऐसा बोला गया तो ये मार्ग हैं माया के हमारे अंदर एंटर होने के। जब अंदर एंटर हो जाती है एक बार तो समझो एक बड़े गेट जैसा रास्ता है माया के पास हमारे अंदर प्रवेश होने का, एक बहुत बड़े फाटक के जैसा। थोड़ा सा अलबेलापन में हम आए, बस कहीं ना कहीं से उसने अपना रास्ता निकाल लिया और व्यर्थ संकल्प के रूप में, व्यर्थ बोल के रूप में, व्यर्थ सुनने के रूप में किसी न किसी रूप में हमारे अंदर एंटर कर गई। परंतु उसको उसके निकलने का मार्ग कैसा है? एक सुई की नोक जैसा। हम अलबेलेपन में आए, एंटर हो गई अंदर, मान लीजिए कुछ बोल दिया ऐसा शब्द, परंतु उस शब्द से जो वातावरण बना, जो उसका प्रभाव सामने वाली आत्मा पर हुआ, पता नहीं कितना लंबा समय तक वो चले और अपनी स्मृति भी खराब हुई, और उसको फिर से ठीक करने में एक मास भी लग सकता है, डेढ़ मास भी लग सकता है, और ना जाने कितना समय लग सकता है, मतलब निकलने में कितना टाइम उसको निकालने में लगेगा, लेकिन प्रवेश होने में कितना समय लगा था? केवल एक सेकंड लगा था। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने पास सदा ही आईना रखो जिसमें सदा ही चेक करते रहो कि बाबा ने जो वरदानों से शक्तियों से गुणों से जो मुझ आत्मा का श्रृंगार किया है वो कहीं खराब तो नहीं हो रहा। हम कई बार केवल रात को अपना चार्ट चेक करते हैं, ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि रात को एक ही बार चेक करेंगे, लेकिन पूरी दिनचर्या में साथ साथ अगर अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? अलबेलेपन में कुछ भी हमारे द्वारा गलतियां होती रहेंगी, भूलें होती रहेंगी, तो जो भूलें हो गई सो हो गई, रात को चेक करने पर क्या होगा? उस समय तो हम उनको कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिनचर्या में साथ साथ अगर हम चेकिंग करते रहेंगे अपनी तो साथ साथ सुधार हमारा हो सकता है। जैसे लौकिक जगत में भी हम देखते हैं कि कईयों को आदत होती है आईना अपने पास रखने की, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे कि हमारा फिजिकल रूप से हम बिल्कुल ठीक हैं, तो थोड़ा भी अगर कहीं खराबी होती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। इसी प्रकार से बाबा जब हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं और हम विस्मृति में आ जाते हैं तो माया की धूल में हम फिर से लिपट जाते हैं, फिर से हम अपने श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि हम साथ साथ अपनी चेकिंग करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे चेकिंग करेंगे उस चेकिंग के साथ साथ हम चेंज भी करते जाएंगे, तो चेंज करते रहने से हमारी अधिक शक्तियां वेस्ट नहीं जाएंगी और हम सदा शक्ति संपन्न होकर के रहेंगे, जैसा कि बाबा हम बच्चों को के प्रति बाबा की आश है या बाबा जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं या हम बच्चे जैसा बने बाबा चाहते हैं। बाबा की कितनी ऊंची आशाएं हैं हम बच्चों के अंदर, और कितनी बाबा ने कहां से कहां हम बच्चों को पहुंचाया है, लाया है, स्थित किया है। अगर उस बात की भी हम स्मृति में रहें तो कितना नशा, कितनी खुशी और कितनी रूहानी खुमारी हम आत्माओं के अंदर सदा ही चढ़ी रहे, जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसी खुमारी, ऐसी रूहानी मस्ती जो दिन रात जिस मोलाई मस्ती के अंदर हम आत्माएं मगन रहें, मस्त रहें। तो कहां से कहां पर थे हम भक्ति मार्ग में, स्मृति में लाइए। हम कहते थे भगवान तेरे चरणों की धूल हैं हम, धूल बना लीजिए या अपना दास ही समझ लीजिए। परंतु प्यारे बाबा जब हम बच्चों को मिले, भगवान के सन्मुख जब हम बच्चे आए, तो शीघ्र अति शीघ्र हमारी प्रमोशन होती चली गई, हम ऊपर से ऊपर उठते चले गए। जिसको बाबा कहते हैं कि संगम युग पर आकर मैं तुम बच्चों को लिफ्ट की गिफ्ट देता हूं, जो सीढ़ी भी ना चढ़नी पड़े, लिफ्ट की ऐसी गिफ्ट। वो क्या लिफ्ट की गिफ्ट दी बाबा ने हम बच्चों को, जो हम चरणों की धूल के भी प्यासे थे कि चरणों की धूल ही समझ ले भगवान हमको, तो उन्होंने हमें चरणों से उठाया और कहां बिठाया, कहां बिठाया, अपनी गोद में ले लिया। फिर वो भी नहीं जमा तो भगवान ने और ऊपर हमें उठाया, अपनी गोद से उठा करके अपने दिल तखत पर बिठा लिया। जिसको बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम मेरे दिल तखत नशीन बच्चे हो, दिल के मालिक हो, दिल पर तुम्हारा अधिकार है, तुम दिल तखत नशीन आत्माएं हो। परंतु हम बच्चे कई बार क्या करते हैं, बाबा तो हमें दिल तखत पर बिठाते हैं, परंतु जैसे नटखट बच्चे होते हैं ना, गोद में लेते हैं माँ बाप उनको और वो फिर नीचे चले जाते हैं, फिर मिट्टी में खेलने लगते हैं। तो प्यारे बाबा भी हम बच्चों को अपने दिल तखत पर स्थान देते हैं, परंतु हम दिल तखत पर बैठकर भी बाहर झांकने लगते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, थोड़ा उसका भी रस ले लें, थोड़ा उसका भी आनंद ले लें। परंतु दिल तखत पर बैठने का जो आनंद है, जो सुख है, जो रस है, वो दुनियावी रसों से कहीं ऊपर का रस है। वो आनंद रस, वो परमात्म प्यार का रस इतना अच्छा रस है कि उस रस के अंदर, उस सुख के अंदर जब हम आत्माएं डूब जाती हैं, गहरी चली जाती हैं, खो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं, तो दुनिया के सारे रस हमको बिल्कुल निरर्थक और बिल्कुल फीके लगने लगते हैं। हम बच्चों की आंख दुनिया के सुखों में, दुनिया के रसों में बिल्कुल कदापि नहीं डूबती, हम बिल्कुल ही दुनिया में रहते हुए भी उससे बिल्कुल न्यारे और प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। जैसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाप सभी कर्म से हमको एक एक बात सिखलाते रहे कि बच्चे सन्यासियों की तरह तुम्हें नहीं बनना, घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाना, अपितु इसी दुनिया में रहते, इसी परिवार में रहते, सब जिम्मेवारी संभालते, सब कर्म करते, कर्म योगी बन करके अपने आप को बिल्कुल दुनिया से न्यारे और प्यारे बना करके चलना है। तो न्यारे और प्यारे कब बनते हैं हम दुनिया में रहते हुए, जब देह से न्यारी मैं आत्मा, देह से न्यारा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा और पुरानी दुनिया से न्यारा, बिल्कुल इस तरह से न्यारे जब हो जाते हैं तो प्रभु प्यारे तो हो ही जाते हैं, लेकिन सर्व के भी प्यारे बन जाते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना दिल तखत नशीन बच्चा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद और ऊपर उठाया कहाँ ले गई, कहाँ ले गए हम बच्चों को? अपने गले का हार बनाया, अपने गले की माला बनाया। उसके पश्चात और ऊपर मुख की मुस्कुराहट, हम भगवान के मुख की मुस्कुराहट हैं, हम भगवान के नैनों में बसने वाले हैं, भगवान हमारे नैनों में बसने वाले हैं। और ऊपर अपने सिर का भी ताज बना लिया। माताओं को क्या कहते हैं बाबा कि पांव की जूती समझा था तुम्हें, परंतु कहां उठा कर ले गए? अपने सिर का ताज बना लिया। और कई बार तो बाबा ये भी कहते हैं कि बाप तुम्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं, जैसे लौकिक में माँ बाप कोई लवली बच्चा होता है तो उसको अपने कंधे पर बिठाते तो वो बच्चा बाप से भी ऊंचा हो जाता। तो प्यारे बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे अपने से भी मैं तुमको ऊंचा बनाता हूँ। वो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चों को पता है कि किस तरह से बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। गीत भी सुनते हैं ना, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, वो हम गीत भी सुनते हैं प्यारे बाबा का। तो इस प्रकार से कहा कि इन स्मृतियों में जितना जितना हम रहेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली हम समर्थ बनते जाएंगे, शक्तिवान बनते जाएंगे। इसके साथ साथ बाबा के साथ किए हुए हम अपने वायदों को भी स्मृति में रखें तो उसका भी फायदा हम बड़े आराम से उठा सकते हैं। परंतु अपने वायदों को भी कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने बाबा के साथ क्या क्या करने के, क्या क्या बनने के, कितना ऊंचा उठने के, या किस तरह के प्रॉमिस किए हैं, समय समय पर क्या वायदे किए हैं। अभी लेटेस्ट मुरली में भी हम सब ने सुना था, तो हम बाबा के साथ क्या वायदा करते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। परंतु फिर क्या करते हैं उसके बाद, फिर भी हम गलती कर देते हैं कि किसी दूसरे तरफ भी हमारी बुद्धि चली जाती है। सर्वोच्च सर्वशक्तिवान त्रिलोकी नाथ, उस सर्वोच्च शक्ति को भी भूल करके कभी कभी हमारा एक्स वाई जेड तरफ ध्यान चला जाता। तो बाबा हम बच्चों को फिर भी से क्या समझाते, बच्चे इन हद के सहारों के किनारे को छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि अंत में ये इन सहारों के किनारे तुम्हें कोई काम नहीं आने वाले। अंत में तुम्हारा सहारा और तुम्हारा किनारा कौन बनेगा? प्यारे बाबा ही बनेंगे। तो इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति को, इस पाठ को पक्का कर लें, निरंतर स्मृति में रहें कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दूसरी स्मृति अर्थात दूसरा वायदा क्या, कि मैं आत्मा हमेशा मालिक और अधिकारी होकर रहूंगी। परंतु क्या करते हैं, अधिकारी की बजाय अधीन हो जाते हैं, और वो भी किसके अधीन हो जाते हैं, सबसे पहले अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन। बाबा ने क्या कहा, शरीर ये तो आपकी रचना है और आत्मा है रचयिता, आत्मा है मालिक, आत्मा है अधिकारी, परंतु रचता ही अगर रचना के वश हो जाए तो क्या हाल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आत्माएं इस रचना अर्थात क्रिएशन के इंद्रियों के वश हो जाते हैं, इसके अधीन हो जाते हैं। जब अधीन हो जाएंगे तो ये इंद्रियां हमारे ऊपर हावी होंगी, तो फिर हम अपने ऑर्डर से इनको नहीं चला सकेंगे, इनके ऑर्डर पर हमको चलना पड़ेगा। तो उसका आउटपुट या उसकी रिजल्ट क्या हाथ में आएगी, वो हम सब समझ सकते हैं। फिर हमने और क्या वायदा किया और क्या कहा बाबा को, कि हम ट्रस्टी होकर रहेंगे। ट्रस्टी का माना क्या है, निमित मात्र। करण करामन हार बाबा है, हम तो केवल मात्र इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जो होता है वो सदा निर्संकल्प होता है, निश्चिंत होता है कि मालिक जैसा कराए, जैसा ऑर्डर दे, मुझे तो वैसा वैसा करते जाना है, बस सारा जिम्मेवारी तो मालिक की है, मुझे तो केवल उसके ऑर्डर पर चलना है। परंतु हम इस वायदे को भी भूल जाते हैं, ट्रस्टी की बजाय क्या बन जाते हैं, क्या कहा था बाबा ने, ट्रस्टी की बजाय क्या बन जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं। तो कई सारी बातों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे ही ये करना है, मैं नहीं हूं तो ये काम बिगड़ जाएगा, मेरे बिना ये काम कैसे होगा, सारी जिम्मेवारी तो मेरी ही है, आदि आदि इस प्रकार वो बोझ कितना हमारे मन पर आ जाता है, जिसको कहते मन पर मनोबोझ। तो जिसके मन पर मनोबोझ होगा तो आत्मा उड़ सकेगी, उड़ान भर सकेगी नहीं। तो हम कितना बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर, परंतु बाबा ने तो कितना सरल विधि, अति सहज विधि हम बच्चों को बता दी है, इस बोझ से फारिग होकर बेफिक्र बादशाह बनने की। अति सरल विधि कौन सी विधि बताई है, कि जिसको आप मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम, मेरे विचार, मेरा कहना, मेरी बात, मेरा मेरा को किस में परिवर्तन कर दो, तेरा में, बस इतनी सी बात है कि उस मेरे को तेरे में ट्रांसफर कर दो, फिर आनंद देखो, फिर वो बेफिक्र बादशाह वाली अपनी स्थिति देखो कि क्या आनंद आता है और कितना हल्कापन, कितनी खुशी, कितनी निश्चिंतता कि सब हुआ ही पड़ा है। करावन हार तो बाप है ना, जिम्मेवारी तो बाप की है, मैं तो केवल कठपुतली हूं उसकी, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो केवल ट्रस्टी हूं, मुझे तो उनकी आज्ञा प्रमाण आगे आगे चलना ही है। तो कितनी बेफिक्र बादशाह वाली, सही माने में बाबा जो मुरली में बार बार हमको कहते कि बच्चे बेफिक्र बादशाह देखना चाहता हूं अपने बच्चों को, बेफिक्र बादशाह, तो वो स्थिति हमारी इस छोटे से एक शब्द के अंदर बड़े अच्छे ढंग से जैसे कि समाई हुई है। जब हम इसको क्रियान्वित करें, अपने ऊपर लागू करें, ढालें इस बात को अपने जीवन के अंदर, अन्यथा तो बोझ बोझ में और इस प्रकार के संकल्पों में काफी लंबा टाइम हमारा वेस्ट चला जाता है। ये काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा, भले हम उस कार्य को करते हैं बाबा की आज्ञा के प्रमाण, परंतु जब सारी बागडोर बाबा के हाथ में सौंप देते हैं तो कार्य और भी अच्छा हो जाता, बहुत बढ़िया होता, क्योंकि निश्चिंतता की स्थिति में किसी भी बात का डिसीजन लेना भी बहुत आसान होता। लेकिन अगर बोझ हो मन पर तो किसी भी बात के लिए सोचना और उसको करना उतना ही कठिन हो जाता। तो इस प्रकार के प्रॉमिस जो बाबा ने के साथ हम बच्चों ने समय समय पर किए हैं, उनको हम स्मृति में रखें तो कितनी सुंदर स्थिति हो जाएगी, और फिर हमारे दिल से और मुख से ऑटोमेटिकली निकलेगा कि वाह रे मैं। तो आदरणीय दादी जी हम सभी के बीच में पहुंच चुके हैं, तो सभी करतल धनी से दादी जी का स्वागत करेंगे।